डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट लिटरेचर, व्याख्यान 20, इफिसियंस 2024, डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर डेव मैथ्यूसन का न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर इफिसियों की पुस्तक पर 20वां व्याख्यान है। इससे पहले कि हम प्रार्थना शुरू करें, मैं एक घोषणा करूंगा और वह चालू है, वास्तव में दो। एक यह है कि गलाटियंस के माध्यम से अधिनियमों पर आपकी अगली परीक्षा है, जो आज गलाटियंस को समाप्त करेगी, लेकिन इस कक्षा के दौरान सोमवार को गलाटियंस के माध्यम से अधिनियमों को समाप्त करेगी अवधि। लेकिन दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको एक ईमेल भेजा था, आपको ईमेल मिल जाना चाहिए था कि कल रात 8 बजे इस कमरे में मेरे टीए के नेतृत्व में एक समीक्षा सत्र है। इसलिए मैं इस कमरे को पाने के लिए यथासंभव प्रयास करता हूं ताकि आपको किसी दूसरे कमरे की तलाश में न भटकना पड़े। तो कल रात 8 बजे इस कमरे में आए और परीक्षा के लिए एक वैकल्पिक यद्यपि अतिरिक्त क्रेडिट समीक्षा सत्र है। और एक बार फिर आप में से कई लोगों ने मुझसे यह पूछा है और मैं इसे दोहराऊंगा कि आप जितनी बार आएंगे आपको अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा। इसलिए यदि आप केवल एक समीक्षा सत्र में उपस्थित होते हैं तो आपको इसके लिए अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा। जाहिर है यदि आप सभी चारों को दिखाते हैं तो इससे आपको और भी अधिक ग्रेड प्राप्त करने में मदद मिलेगी और आपको अधिक अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा। तो कल 8 बजे इसी कमरे में, ठीक है? प्रश्न। पहली परीक्षा निश्चित रूप से शुक्रवार तक होगी, आपको देखने को मिलेगी। वे सभी वर्गीकृत हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कुछ ग्रेडिंग मुद्दे हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूं, लेकिन वे शुक्रवार को होने चाहिए ताकि आप देख सकें कि आपने परीक्षा संख्या 2 से पहले कैसा प्रदर्शन किया। ठीक है, आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें और फिर हम गैलाटियंस को देखना समाप्त करेंगे और शायद अगले पत्र की ओर बढ़ेंगे जिस पर हम विचार करेंगे। पिता, फिर से हम आपको नए नियम के रूप में अपने आप को इतनी दयालुता से प्रकट करने के लिए धन्यवाद देते हैं। भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इसका विश्लेषण करने, उसके बारे में सोचने और उस रहस्योद्घाटन का अध्ययन करने के अवसर का लाभ उठाएंगे, इस इच्छा के साथ कि हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुरूप और ढाला जाएगा जो आपके वचन में हमारे सामने प्रकट हुआ है। तो उस अंत तक हम आपके रहस्योद्घाटन को समझने के लिए अपनी सारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा लगाते हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह वर्ग बस एक छोटे से तरीके से उस लक्ष्य में योगदान देगा। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, हम गलातियों की पुस्तक को देख रहे हैं जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था, या जो मैंने सुझाया था, वह पॉल का प्रयास था कि वह बैठ न जाए और केवल कानून के धर्मशास्त्र या औचित्य और मुक्ति के धर्मशास्त्र के बारे में बात न करे। हालांकि पॉल ऐसा करता है, लेकिन यह पॉल के विशेष उद्देश्य की सेवा में धर्मशास्त्र है, और वह यह है कि पॉल एक ऐसी स्थिति को संबोधित कर रहा है जहां यहूदी ईसाइयों को अक्सर यहूदीवादियों का लेबल दिया जाता है, जिन्होंने गैलाटिया में चर्चों में घुसपैठ की है, यानी गैलाटिया के दक्षिणी प्रांत चर्च जो पॉल स्वयं है लगाया है। अब यहूदी ईसाइयों ने चर्च में घुसपैठ कर ली है और गैर यहूदी ईसाइयों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह में विश्वास पर्याप्त नहीं है। वे यह नहीं कह रहे हैं कि यीशु मसीह में विश्वास आवश्यक नहीं है। वे इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीहा है या उनका अस्तित्व था। वे केवल यह कह रहे हैं कि यीशु में विश्वास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक पहचान चिन्ह के रूप में मूसा के कानून का भी पालन करना चाहिए, एक संकेत के रूप में कि आप भगवान के सच्चे लोग हैं और आप वास्तव में भगवान के हैं। हमने कहा कि पॉल जिन यहूदी ईसाइयों से लड़ रहा है उनमें से अधिकांश यह समझ चुके होंगे कि मुक्ति के सभी वादे अब्राहम के पास वापस जाते हैं। आपको पुराने नियम की उत्पत्ति 12 याद है, कि परमेश्वर ने वादा किया था कि वह इब्राहीम को आशीर्वाद देगा और अंतः पृथ्वी के सभी राष्ट्रों को इब्राहीम के माध्यम से आशीर्वाद मिलेगा। तो परमेश्वर के लोगों से संबंधित मुक्ति, औचित्य, पवित्र आत्मा के सभी वादे, वे सभी अब्राहम के पास वापस चले जाते हैं। अब यहूदी ईसाइयों के लिए इब्राहीम से किए गए वादों से लेकर मोसेक कानून का पालन करने और उसे पूरा करने और यीशु मसीह में विश्वास करने तक एक सीधी रेखा खींची गई होगी। तो उन्होंने कहा होगा कि मूसा का कानून महत्वपूर्ण है और यह कोई वैकल्पिक कदम नहीं है। यह इब्राहीम के वादों को पूरा करने में एक आवश्यक कदम है, मुक्ति जिसका वादा इब्राहीम से किया गया था। तो उन्होंने खींच लिया होता, उन्हें इन कोष्ठकों से छुटकारा मिल गया होता और उनके पास इब्राहीम से किए गए वादों से लेकर मोसेक कानून और फिर मसीह में विश्वास तक एक सीधी रेखा होती। इसलिए मोसेक कानून एक महत्वपूर्ण और आवश्यक घटक था। तब वे गैर यहूदी ईसाइयों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यदि उन्हें वास्तव में ईश्वर के लोग बनना है और यदि वे वास्तव में न्यायसंगत हैं, तो वे मूसा के कानून के प्रति समर्पण करेंगे और यहूदियों की तरह यहूदी धर्मावलंबियों के रूप में जीवन जिएंगे। लेकिन गलातियों में, विशेषकर अध्याय 3 और 4 में पॉल जो करता है, वह पॉल प्रदर्शित करता है, और इसीलिए मैंने मोसेक कानून को कोष्ठक में रखा है। वह यह तर्क देने की कोशिश करता है कि मोसेक कानून ने एक महत्वपूर्ण लेकिन केवल एक अस्थायी भूमिका निभाई, एक ऐसी भूमिका जहां कानून केवल यीशु मसीह के आने तक ही कार्य करता था। तो अब जब मसीह आ गया है और पूर्णता लेकर आया है, तो मोसेक कानून की अब आवश्यकता नहीं है। तो पॉल एक तरह से यहूदीवादियों की योजना लेता है, जिसमें कानून एक महत्वपूर्ण और आवश्यक और अनिवार्य भूमिका निभाता होगा, और वह यह कहने के लिए कोष्ठक में रखता है, हाँ, कानून ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन यह तब तक केवल एक अस्थायी भूमिका थी। मसीह आए। जब मसीह का आगमन हुआ, तो पुराने नियम के कानून का प्राथमिक कार्य रक्षा करना और मार्गदर्शन करना और एक अर्थ में भगवान के लोगों पर अधिकार और शक्ति प्राप्त करना अब समाप्त हो गया है। अब हम फिर से सवाल उठाने जा रहे हैं, क्या इसका मतलब यह है कि हमें आज मोसेक कानून को नहीं सुनना है, या इस पर कोई ध्यान नहीं देना है, या इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है और हम इसे सुरक्षित रूप से अनदेखा कर सकते हैं? यह मैं उस प्रश्न को संक्षेप में उठाना चाहता हूँ, हमें मूसा के कानून के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे अध्याय 5 के बारे में संक्षेप में बात करने दें। अध्याय 5 में पॉल के तर्क का अंत और यह प्रसिद्ध खंड है जहाँ पॉल विरोधाभास करता है, और यदि हम गैलाटियन के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आमतौर पर यह वह पाठ है जिससे हम सबसे अधिक परिचित हैं के साथ, और वह पॉल का शरीर और आत्मा के बीच विरोधाभास है। और इसलिए पॉल कहते हैं, शरीर के कार्य ये हैं, और वह उन बुराइयों को सूचीबद्ध करता है जिनसे वह चाहता है कि उसके पाठक बचें। और फिर वह कहता है, हालांकि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति है, और शायद आप में से कुछ ने आत्मा के फलों की सूची को याद कर लिया है। और सवाल यह है कि यह यहाँ क्या कर रहा है? पौलुस शरीर के कार्यों और आत्मा के फल के बीच इस अंतर पर विस्तार से क्यों बताता है? मुझे लगता है दो कारणों से। नंबर एक, एक अर्थ में पॉल है, मुझे लगता है, प्रश्न को संबोधित करते हुए, यदि पॉल कहते हैं कानून केवल अस्थाई था और यह अब भगवान के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, अब जब मसीह आ गया है तो करता है, इसका मतलब यह है कि ईसाई सभी कानूनों से मुक्त हैं। क्या इसका मतलब यह है कि उनके पास कोई नैतिक मार्गदर्शन नहीं है और वे जो चाहे कर सकते हैं? और पॉल स्पष्ट करता है, नहीं, ईसाई अभी भी प्रेम से बंधा हुआ है, और ईसाई अब नई वाचा की आत्मा में चलने के लिए जिम्मेदार है जिसे उंडेला गया है। दूसरे शब्दों में, आत्मा के फल के बारे में पॉल का संदर्भ पुराने नियम में जाता है, जहां क्या आपको यिर्मयाह अध्याय 31 में नई वाचा याद है, भगवान ने वादा किया था कि वह एक दिन लोगों के दिलों पर अपना कानून लिखेंगे और यहेजकेल ने वादा किया था कि भगवान उन्हें बदलने के लिए लोगों पर अपनी आत्मा डालेंगे। तो पॉल मूल रूप से जो कह रहा है वह यह है कि मोज़ेक कानून अब भगवान के लोगों पर प्रमुख अधिकार और शासक नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे नैतिक मार्गदर्शन के बिना हैं। अब उनके पास नई वाचा की पवित्र आत्मा है जो उन्हें रूपांतरित करती है और उन्हें वह करने में सक्षम बनाती है जिसकी व्यवस्था सबसे पहले व्यवस्था करती है और परमेश्वर के लोगों से अपेक्षा करती है। तो पॉल का स्पष्ट कहना है, नहीं, भगवान के लोग नैतिक मार्गदर्शन के बिना नहीं हैं। इसके बजाय अब उनके पास नई वाचा की आत्मा है जिसके बारे में परमेश्वर ने वादा किया था कि वह अपने कानून को उनके दिलों में उंडेलेगा और लिखेगा, उन्हें बदल देगा और उन्हें उस तरह का जीवन जीने में सक्षम करेगा जिसकी ओर कानून पहले संकेत कर रहा था। तो इसके बिल्कुल विपरीत, परमेश्वर के लोग नैतिक मार्गदर्शन से मुक्त नहीं हैं। लेकिन दूसरी, इस परिच्छेद के बारे में समझने वाली दूसरी बात यह है कि मुझे विश्वास है कि पॉल अभी भी कानून और आत्मा के बीच अंतर कर रहा है। वह अभी भी पुराने नियम के कानून के बारे में बात कर रहा है और वह जो कह रहा है वह यह है कि यदि गलाटियन कानून के तहत जीवन जीना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पॉल का यह कहना कि कानून में अंतः शरीर के पापों पर काबू पाने की शक्ति नहीं है, इस प्रकार की चीजें वह यहां सूचीबद्ध करता है, ये शरीर के कार्य हैं। और पॉल जो कह रहा है वह यह है कि अंतः कानून में अंतः इससे निपटने और शरीर के कार्यों पर काबू पाने की शक्ति नहीं है, लेकिन आत्मा करता है। इसीलिए पॉलुस कहता है, इसलिए यदि कोई आत्मा के अनुसार चलता है तो तूने शरीर पर विजय पाली है, या फिर तुम शरीर के अनुसार फिर न चलोगे। क्यों? क्योंकि अब इस नई वाचा की आत्मा के माध्यम से जिसका परमेश्वर ने वादा किया है और उसे उंडेला है, जो वादा करता है कि परमेश्वर अपना कानून उनके दिलों में लिखेगा और वह उन्हें बदल देगा ताकि वे परमेश्वर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, नई वाचा की आत्मा के माध्यम से अब वे हैं शरीर के कर्मों पर विजय पाने में सक्षम। तो एक बार फिर आप पॉल के तर्क को देख सकते हैं। गलाटियन मोज़ेक कानून पर वापस क्यों जाना चाहेंगे? वे यहूदीवादियों के आगे झुकना और कानून के तहत जीवन क्यों जीना चाहेंगे जबकि उसके पास शक्ति नहीं है? यह न केवल अस्थाई था बल्कि अंततः इसमें शरीर के पापों पर काबू पाने की शक्ति भी नहीं थी। केवल नई वाचा की आत्मा जो मसीह में विश्वास के माध्यम से आती है अंततः उन्हें उस तरह का जीवन जीने और पाप पर काबू पाने में सक्षम बनाती है जिसकी ओर कानून पहले संकेत कर रहा था। तो इसका क्या मतलब है फिर, जब हम इस प्रश्न के बारे में सोचते हैं तो कानून के साथ हमारे संबंध के संबंध में इसका क्या मतलब है? मोज़ेक कानून के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? और कानून से मेरा मतलब किसी कानून से नहीं है। पॉल विशेष रूप से मूसा के कानून के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। उससे हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए? या चूंकि पॉल कहता है, हमें ध्यान देना चाहिए कि वह 5:18 में क्या कहता है। पॉल कहते हैं, लेकिन यदि आप आत्मा के नेतृत्व में हैं तो आप अब कानून के अधीन नहीं हैं, या आप कानून के अधीन नहीं हैं। इसलिए यदि हम अब कानून के अधीन या कानून के अधीन नहीं हैं, और मूल रूप से पॉल यही कह रहा है, तो क्या कानून ने भगवान के लोगों पर शासन करने और उन्हें नियंत्रित करने में एक अस्थायी भूमिका निभाई है? यदि हम अब कानून के अधीन नहीं हैं और इसके बजाय हमें मसीह में आई पूर्णता के प्रकाश में आत्मा के अनुसार चलना है, तो यह आज ईसाइयों और भगवान के लोगों के साथ कानून के संबंध के बारे में क्या सुझाव देता है? क्या इसके प्रति हमारा कोई दायित्व है, या क्या हम इसे सुरक्षित रूप से अनदेखा कर सकते हैं? क्योंकि पॉल कहता है कि हम अब कानून के अधीन नहीं हैं, और इसके बजाय हम आत्मा द्वारा निर्देशित हैं, हमें आत्मा में चलना है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं पुराने नियम के अधिकांश हिस्से को सुरक्षित रूप से अनदेखा कर सकता हूं क्योंकि यह मोज़ेक कानून के मुद्दों को संबोधित करता है? मैं कुछ बातें सोचता हूं। सबसे पहले, फिर से मुझे लगता है कि पॉल स्पष्ट है कि जैसा कि वह कहता है, हम अब कानून के अधीन नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि हम अब मोज़ेक वाचा के हिस्से के रूप में कानून के शासन और शासन के अधीन नहीं हैं। जब पॉल कानून का जिक्र कर रहा है तो मुझे लगता है कि वह इसे उस संपूर्ण वाचा के प्रकाश में समझ रहा है जो भगवान ने मूसा के साथ बनाई थी। अब जबकि परमेश्वर ने मूसा के साथ जो वाचा बांधी थी, मोज़ेक वाचा, वह पूरी हो चुकी है और अब लागू नहीं है, मैं मानता हूं कि मोज़ेक कानून भी उतना अच्छा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि पॉल कह रहा है कि ईसाई अब मोज़ेक कानून से बंधे नहीं हैं, वे अब इसके शासन और शासकत्व के अधीन नहीं हैं। हालांकि मुझे लगता है कि दो अन्य बातें भी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। नंबर एक यह है कि पॉल समान रूप से आश्वस्त है कि कानून को सिर्फ हटा दिया गया है और अलग रख दिया गया है और खत्म नहीं कर दिया गया है, बल्कि व्यवस्था को मसीह यीशु में पूरा किया गया है। गलातियों 5 में पॉल जो कह रहा है वह आत्मा मार्ग का यह फल है, यदि कोई आत्मा के अधीन जीवन जीता है, यदि कोई आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति और अन्य चीजों का पालन करता है, तो क्या आप वास्तव में हैं उस तरह का जीवन जीना जिसकी ओर कानून सबसे पहले इशारा कर रहा था? इसलिए कानून को केवल खत्म नहीं किया जाता है और बाहर फेंक दिया जाता है या हटा दिया जाता है, इसे पूरा किया जाता है। इसलिए कानून ने जिस प्रकार के जीवन की ओर इशारा किया था वह अंततः अब यीशु मसीह में और नई वाचा की पवित्र आत्मा में जीवन जीने में पूरा हो गया है। तो पहला सवाल, जब मूसा के कानून के बारे में सोचने की बात आती है और क्या यह हम पर लागू होता है, तो मैं आपको क्या सुझाव दूंगा? आपको पहला सवाल यह पूछना चाहिए कि कानून यीशु मसीह में कैसे पूरा हुआ है। यदि आप मैथ्यू पर वापस जाएं, तो मैथ्यू अध्याय 5 पहाड़ी उपदेश याद रखें। मैथ्यू 5 में उपदेश के आरंभ में ही यीशु ने कहा, मैं कानून को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसे पूरा करने के लिए आया हूं। और मैंने सुझाव दिया कि उसका मतलब यह था कि यीशु का अपना जीवन और शिक्षा वही थी जिसकी ओर कानून इशारा कर रहा था, और इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूं, और मुझे लगता है कि गलातियों 5 में पॉल जो कह रहा है उसका एक निहितार्थ यह है कि हमें कानून को इस नजरिए से देखना चाहिए कि इसे मसीह में कैसे पूरा किया गया है। उदाहरण के लिए, सबसे आसान उदाहरण, और इसे समझना हमेशा आसान नहीं होता है क्योंकि नया नियम हर कानून से नहीं गुजरता है और यह नहीं दिखाता है कि यह मसीह में कैसे पूरा हुआ है, लेकिन आसान उदाहरणों में से एक यह है कि बलिदान के सभी नियमों के बारे में क्या? पुराने नियम में दी जाने वाली सभी जानवरों की बलि के बारे में क्या? यह सबसे आसान उदाहरणों में से एक है, यह कहने के बजाय कि यह अब लागू नहीं होता है, इसे बाहर फेंक दिया गया है, क्या इसके बजाय हमें यह पूछना होगा कि हम उस कानून का पालन कैसे करते हैं या हम उसका पालन कैसे करते हैं? हम पुराने नियम के बलि कानूनों से कैसे संबंधित हैं जहां उन्होंने ईसा मसीह के आगमन के आलोक में जानवरों की बलि दी थी? खैर, इसमें यीशु ही अंतिम परम बलिदान है। अब हम अपने उद्धार के लिए यीशु मसीह पर भरोसा करके बलिदानों के नियम को पूरा करते हैं, न कि अब जानवरों की बलि चढ़ाकर। इसलिए मेरे विचार से यह एक आसान उदाहरण है कि कैसे मसीह की पूर्णता के चश्मे से कानून को पढ़ने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम कैसे हैं और कानून के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। इसलिए मैं सत्य के रूप में सुझाव दे रहा हूं, संपूर्ण कानून पहली चीज है जो हमें पूछना चाहिए कि कानून को मसीह में कैसे पूरा किया गया है। हम इसे लेंस के प्रकाश में कैसे समझते हैं? हम इसे यीशु मसीह द्वारा लाई गई पूर्णता के लेंस के माध्यम से कैसे पढ़ते हैं? दूसरी बात जो मैं आपको सुझाऊंगा वह यह है कि जब कानून को पढ़ने की बात आती है तो अपने आप से पूछें कि क्या है, और जब हम कानून को देखते हैं तो सबसे पहले मुझे वापस जाने दीजिए। मैं मान रहा हूं कि कानून, भले ही पॉल कहता है कि हम अब कानून के अधीन नहीं हैं, मोज़ेक कानून अब वह शासन नहीं है जिसके तहत हम अब रहते हैं, लेकिन पॉल कहते हैं कि अब आप कानून के अधीन नहीं हैं, आप अब उसके अधिकार, उसके शासन के अधीन नहीं हैं। फिर भी कानून अभी भी एक अभिव्यक्ति है, भले ही यह इज़राइल के लिए एक विशिष्ट अभिव्यक्ति थी और एक विशिष्ट समय में, जब तक कि मसीह में पूर्ति नहीं हुई, यह अभी भी अपने लोगों के लिए भगवान की इच्छा की अभिव्यक्ति है। और इसलिए दूसरी बात यह पूछने के अलावा कि मसीह में कानून कैसे पूरा हुआ है, अगला सवाल हमें यह पूछना चाहिए कि किसी भी कानून में इस कानून का इरादा क्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि सच्चा इरादा क्या था, कानून किस उद्देश्य से चल रहा था, और फिर यह पूछना कि यह आज परमेश्वर के चरित्र की अभिव्यक्ति और परमेश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में परमेश्वर के लोगों पर कैसे लागू हो सकता है। मैं आपको एक या दो उदाहरण देता हूं। यह लेविकस अध्याय 19 में पाया जाता है। आइए देखें, यह यहां है। यह लेविकस अध्याय 19 और श्लोक 27 और 28 है। यह पुराने नियम के कानून से बाहर है। तुम्हें अपनी कनपटी के बालों को गोल नहीं करना चाहिए या अपनी दाढ़ी के किनारों को खराब नहीं करना चाहिए। तुम्हें मरे हुओं के कारण अपने शरीर पर कोई घाव नहीं बनाना चाहिए और न ही अपने शरीर पर गोदने का कोई निशान रखना चाहिए। मैं भगवान हूं, ठीक है, इसलिए आपके बाल नहीं कटेंगे और कोई टैटू नहीं बनेगा। हम में से अधिकांश लोग शायद जानबूझकर अपना मांस नहीं काटेंगे, लेकिन हम इसे कैसे पढ़ते हैं? मेरा मतलब है, यदि आप बाल कटवाने जाते हैं तो क्या आपने मोज़ेक कानून का उल्लंघन किया है? यदि आपके पास टैटू है तो क्या आपने मोज़ेक कानून का उल्लंघन किया है? मेरा मतलब है, यह यही कहता है, अपने आप पर टैटू न बनवाएं, अपने बालों के किनारों या अपनी दाढ़ी के किनारों को न काटें। क्या आपने मोज़ेक कानून का उल्लंघन किया है? खैर, यह इसे संभालने का एक तरीका है। या क्या होगा यदि हम मसीह में पूर्णता के प्रकाश में, और वास्तविक इरादा क्या था, इस कानून का इरादा क्या प्रतीत होता है, के प्रकाश में पूछें? कम से कम कई टिप्पणीकार सोचते हैं कि ये कानून बुतपरस्त धार्मिक प्रथाओं के उद्देश्य से थे, वह है किसी की दाढ़ी या बालों को गोदना और काटना। इनका उद्देश्य विशिष्ट बुतपरस्त धार्मिक प्रथाओं पर था। तो इस कानून का इरादा सिर्फ टैटू न करने और बालों को ट्रिम न करने का ही नहीं है, यह उन प्रथाओं से बचना है जो बुतपरस्त धर्मों से जुड़ी हैं। और इसलिए आज कोई अपने आप से पूछना चाहेगा कि किस प्रकार की प्रथाएं और गतिविधियां बुतपरस्त धार्मिक प्रकार की गतिविधियों से जुड़ी होंगी जिनसे मैं बचना चाहता हूं। आजकल बहुत कम ही कोई धार्मिक प्रथाओं के लिए टैटू बनवाता है। हम में से अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते। अन्य कारण भी हो सकते हैं कि आप टैटू गुदवा सकते हैं या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से लेविकस में आदेश उनमें से एक नहीं होगा, क्योंकि यह फिर से संभवतः बुतपरस्त धार्मिक प्रथाओं के उद्देश्य से है जिससे भगवान चाहते हैं कि इसराइली बचें। इसलिए जब हम उस इरादे को समझते हैं तो हम अपने संदर्भ में खुद से पूछते हैं कि किस प्रकार की गतिविधियां या यहां तक कि पहनावे के तरीके भी हो सकते हैं, और मुझे पता है कि अभी भी सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है और आप बहस में पड़ जाते हैं, खैर वे क्या हैं चीजें। लेकिन जब हम इन ग्रंथों को लागू करने के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इरादा भगवान के लोगों को उन प्रकार की गतिविधियों से दूर करने के लिए है जो बुत परस्त धार्मिक प्रकार की प्रथाओं से जुड़े हैं। तब कोई यह पूछना चाहेगा कि वे किस प्रकार की चीजें या गतिविधियां होंगी जो मुझे बुत परस्त धार्मिक गतिविधि से जोड़ देंगी, चाहे वह कुछ भी हो। तो क्या आप इरादे का सवाल पूछने में अंतर देखते हैं? इस कानून को सीधे तौर पर पढ़ने और यह न पूछने के बजाय कि भगवान उन्हें पहले स्थान पर क्यों देते हैं, इस कानून का इरादा क्या प्रतीत होता है? यह उनके लोगों के लिए उनके इरादे और उनके लोगों के लिए उनकी इच्छा के बारे में क्या दर्शाता है और फिर आज वह कैसा दिख सकता है? एक अन्य उदाहरण कानूनों में से एक है और मुझे इसमें टेड से मेरी मदद करने के लिए कहना पड़ सकता है। मुझे याद नहीं आ रहा कि वह कहाँ है। कानून इसराइलियों को अपनी छत के चारों ओर एक छत या बाड़ बनाने का आदेश देता है। मुझे लगता है कि यह व्यवस्था विवरण में कहीं है। एक सोदेश। इसलिए निर्गमन ने इसराइलियों को अपने घर की छत के चारों ओर एक छत या बाड़ बनाने का आदेश दिया। अब यदि आप मेरे घर आएं और छत को देखें, तो उस पर चढ़ने का प्रयास करना आपकी मूर्खता होगी। यह बहुत पिच है। लेकिन क्या मैंने मोज़ेक कानून का उल्लंघन किया है क्योंकि मेरी छत के चारों ओर कोई मुंडेर या बाड़ नहीं है? और मैं शर्त लगाता हूं कि आपके अधिकांश घरों में भी ऐसा नहीं होगा। तो क्या आप मोज़ेक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि आपके घर की छत के चारों ओर कोई छत या बाड़ नहीं है? खैर, यह याद रखना एक बार फिर महत्वपूर्ण है कि इस कानून का इरादा क्या है। खैर, कम से कम उस समय के दौरान एक घर की छत का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता था और छत पर लोग थे। मुझे लगता है कि उस दौरान वे अधिक सपाट थे, तो इसराइलियों को छत के चारों ओर बाड़ बनाने के लिए कहने का इरादा यह था कि इरादा अपने पड़ोसियों के कल्याण और कल्याण की रक्षा करना था, यह सुनिश्चित करना कि वे जीवन के लिए चिंता दिखा रहे थे और के मूल्य का प्रदर्शन कर रहे थे उनके पड़ोसियों का जीवन। इसलिए मूल रूप से ताकि कोई छत से गिरकर मारा न जाए या शारीरिक चोट न झेले। तो यही सच्चा इरादा प्रतीत होता है। तो फिर मुझे आज पूछना है कि मैं किस तरह से उस इरादे को मूर्त रूप दे सकता हूँ? खैर, यह शायद मेरे घर के चारों ओर छत बनाने या मेरे घर की छत के चारों ओर बाड़ लगाने से नहीं होगा। मुझे खेद है, क्योंकि कोई भी वहां नहीं जाता है और कोई भी वहां तब तक नहीं जा सकता जब तक कि वे नया न लगा दे दांत पर। तो फिर मुझे पूछना होगा कि मुझे अपने पड़ोसी की भलाई और सुरक्षा के लिए किस तरह से देखभाल और चिंता प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। फिर यह संभवतः मेरे घर के चारों ओर बाड़ का निर्माण नहीं करने जा रहा है, लेकिन मैं अन्य तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर सकता हूं जहां मैं उस इरादे और उस सिद्धांत को अपना सकता हूं। तो क्या आप देखते हैं, सच्चे इरादे के दृष्टिकोण से कानूनों को देखकर वे अपने लोगों के लिए भगवान के इरादे और उनके लोगों के लिए उनकी इच्छा का प्रतिबिंब कैसे हैं? तब कोई उन तरीकों को समझना शुरू कर सकता है जिनमें मूसा का कानून लागू होता है। तो फिर मेरा सुझाव है, एक ओर जबकि हम अब मूसा के कानून के अधीन नहीं हैं, हम कानून की सूची के रूप में इसके लिए बाध्य नहीं हैं, हम इसके शासन और अधिकार के अधीन नहीं हैं। साथ ही नंबर एक, हमें इसे इस प्रकाश में पढ़ने की जरूरत है कि यह मसीह में कैसे पूरा हुआ है, यह समझने के लिए कि हम इससे कैसे संबंधित हैं, और हमें इसे अपने लोगों के लिए भगवान की इच्छा और इरादे की अभिव्यक्ति के रूप में पढ़ने की जरूरत है, और यह पूछने की जरूरत है कि क्या लगता है कानूनों के पीछे की मंशा क्या है, और मैं उस नई वाचा की भावना की शक्ति के तहत कैसे जी सकता हूँ जिसके बारे में पॉल बात करता है। आत्मा में चलकर मैं आज अपने लोगों के लिए भगवान की इच्छा और इरादे को कैसे जीना जारी रख सकता हूँ? वास्तव में यदि आप रुचि रखते हैं तो मैंने आपके नोट्स के नीचे कुछ संसाधन दिए हैं। एक बहुत दिलचस्प किताब है, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया है, लेकिन ज़ोंडरवन पब्लिशिंग कंपनी की एक श्रृंखला है। वे सभी समान रूप से अच्छे नहीं हैं, लेकिन वे अलग अलग विचारों, विभिन्न मुद्दों और वे क्या हैं पर किताबें तैयार कर रहे हैं। क्या वे अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, जैसे सहस्राब्दी या मंत्रालय में महिलाएं, या क्या ईसाइयों को युद्ध में जाना चाहिए, या चर्च में किस तरह की सरकार होनी चाहिए, या चर्च को कैसे शासित किया जाना चाहिए, न कि किस तरह की सरकार कैसे होनी चाहिए चर्च को चलाया जाना चाहिए, सरकार के साथ हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए, आदि आदि कई मुद्दे हैं। और यह मूल रूप से अलग अलग विचार प्रस्तुत करता है, और अलग अलग व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और फिर एक दूसरे को जवाब देते हैं। उन पुस्तकों में से एक को द लॉ एंड द क्रिश्चियन कहा जाता है, और कानून के साथ ईसाई का संबंध क्या होना चाहिए, इसके लिए 5 अलग अलग दृष्टिकोण हैं, और वे एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए यदि आप इसे और अधिक आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं तो यह हो सकता है एक प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, मैं गलातियों के बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, लेकिन मुख्य बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि लिखित रूप में पॉल का पूरा इरादा गलातियों को मोज़ेक कानून के प्रति समर्पण करने और यहूदियों के आगे झुकने से रोकने की कोशिश करना है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें समझाना और उन्हें आश्वस्त करना कि उनके पास मसीह और नई वाचा की भावना में वह सब कुछ है जो उनके पास है, न केवल उनके उद्धार के लिए उचित ठहराया जा सकता है, बल्कि उनकी चल रही जीवन शैली के लिए भी, किसी भी मामले में उन्हें वापस लौटने की आवश्यकता नहीं है। यहूदीवादी उनसे मोज़ेक कानून की मांग कर रहे थे। अच्छा, गलातियों पर कोई अन्य प्रश्न? ठीक है, आप देखेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में अगला भाग भ्रमण में से एक है, और वह यह है कि मैं उन विषयों में से एक के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ जो गैलाटियन से उभरता है, लेकिन शेष नए नियम में भी महत्वपूर्ण है, और वह परमेश्वर के लोगों का विषय है। इस विषय को समझने के लिए हमें पुराने नियम में और वास्तव में उत्पत्ति 1 और 2 में वापस जाने की आवश्यकता है, जहाँ मेरी राय में आदम और हव्वा की रचना सिर्फ रचना नहीं थी पहले इंसानों में से, लेकिन वे परमेश्वर के पहले लोग थे जिनके साथ परमेश्वर ने एक वाचा के रिश्ते में प्रवेश किया था। तो फिर आदम और हव्वा सिर्फ पहले इंसान नहीं हैं, वे हैं, बल्कि वे भगवान के पहले लोग हैं, पहले बनाए गए लोग हैं जिनके साथ भगवान एक रिश्ते में प्रवेश करेंगे। अब आदम और हव्वा के पतन के बाद, उत्पत्ति 3 में उनके पाप के बाद, एक अर्थ में पुराने नियम की शेष कथा और नए नियम में भी, लेकिन हम उस पर एक क्षण के लिए प्रतीक्षा करेंगे, शेष पुराने नियम की कथा को अपने लोगों को फिर से स्थापित करने और फिर से बनाने के भगवान के इरादे के रूप में देखा जा सकता है। परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में है जिनके साथ वह एक अनुबंधित रिश्ते में प्रवेश कर सके, और इसकी शुरुआत इब्राहिम को परमेश्वर की आज्ञा से होती है। तो आप देख सकते हैं कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि पॉल ने इब्राहिम और गलातियों के बारे में बात की, क्योंकि इब्राहिम के साथ भगवान अब अपने लोगों के साथ अपने वाचा के रिश्ते को बहाल करना शुरू कर देंगे जो कि ईडन गार्डन में शुरू हुआ था लेकिन पाप के कारण बाधित हो गया था। इसलिए उत्पत्ति अध्याय 12 में परमेश्वर इब्राहिम को चुनता है और उससे कहता है कि वह न केवल उसे आशीर्वाद देगा बल्कि वह उसका नाम महान करेगा और उसे एक महान राष्ट्र बनाएगा और उस राष्ट्र से अंतः पृथ्वी के सभी राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो इब्राहिम और परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ जो वाचा बनाई है वह परमेश्वर द्वारा मानवता की स्थापना का पहला चरण है, जैसा कि उसने ईडन गार्डन में किया था, जिसके साथ वह एक वाचा के रिश्ते में प्रवेश करेगा। वह उनका परमेश्वर होगा और वे उसकी प्रजा होंगे। अब अंतः, जैसा कि हम पुराने नियम के बाकी हिस्सों का अनुसरण करते हैं, अंतः वह इज़राइल राष्ट्र में उभरता है जिसके साथ भगवान एक वाचा संबंध स्थापित करते हैं। और इसलिए आप फिर से देख सकते हैं कि पौलुस ने गलातियों में जिन यहूदीवादियों का सामना किया था, वे अन्य जातियों को यहूदी धर्म के साथ पहचानने और मूसा के कानून के प्रति समर्पित होने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार वे इब्राहीम के सच्चे पुत्र थे। वे परमेश्वर के सच्चे लोग थे। हालांकि जब आप नए नियम पर पहुंचते हैं तो बदलाव आना शुरू हो जाता है। आप जो घटित होता हुआ पाते हैं वह यह है कि यदि आप इस पैटर्न का पालन करते हैं तो आदम और हव्वा मानवता के पहले व्यक्ति हैं जिनके साथ ईश्वर एक वाचा के रिश्ते में प्रवेश करता है, लेकिन पाप के कारण ईश्वर अब अपने लोगों को पुनर्स्थापित करने और अपने लोगों को फिर से बनाने के लिए कार्य करेगा। इसलिए वह इब्राहीम को चुनता है और उसे एक महान राष्ट्र बनाने का वादा करता है, और वह इसराइल का राष्ट्र है। हालांकि जैसा कि हमने देखा, भविष्य सूचक साहित्य, यदि आपको याद हो, तो वास्तव में एक दिलचस्प समानता चल रही है। आदम और हव्वा की परीक्षा होती है और वे परीक्षा में पड़ जाते हैं और पाप करते हैं, और यदि तुम स्मरण करो तो उन्हें अदन की वाटिका से निर्वासित कर दिया जाता है। अब इसराइल के साथ क्या होता है? ईश्वर इसराइल राष्ट्र को चुनता है, उन्हें भूमि पर लाता है और उनका परीक्षण करता है, फिर भी वे परीक्षण में विफल हो जाते हैं और उन्हें भी निर्वासित कर दिया जाता है। इसलिए यदि आप अपने पुराने नियम के इतिहास को याद करते हैं तो इसराइल निर्वासन में चला जाता है। बेबीलोन और अश्शूर ने इसराइल और यहूदा राष्ट्र को बंधुआई में भेज दिया, और इसलिए भविष्यवक्ता एक ऐसे समय की आशा करते हैं जब एक बार फिर परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित करेगा। परमेश्वर को अभी भी अपने लोगों को एक अनुबंधित रिश्ते में पुनर्स्थापित करना होगा, जिसका इरादा उसने उत्पत्ति 1 और 2 में किया था। अब नए नियम में यह कैसे पूरा होता है? सबसे पहले यीशु को सच्चे इसराइल के रूप में चित्रित किया गया है। यीशु ही वह है जो अंततः अपने लोगों इसराइल के लिए परमेश्वर के इरादे को पूरा करता है। यदि आपको यीशु का प्रलोभन याद है तो हमने मत्ती 3 और 4 में उसके प्रलोभन के बारे में थोड़ी बात की थी, जब यीशु को शैतान द्वारा प्रलोभित किया गया था। वह उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और उसे सभी राज्य दिखाता है। वह उसे मंदिर से बाहर ले जाता है और उसे कूदने के लिए कहता है। वह उससे पत्थरों को रोटी बनाने के लिए कहता है। उस क्रम में नहीं, लेकिन आपको वह याद है। मूल रूप से जो हो रहा है वह यह है कि यीशु इसराइल के प्रलोभन और आदम और हव्वा के प्रलोभन दोनों को दोहरा रहे हैं। वे असफल रहे, परंतु यीशु परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वह सच्चा इसराइल है जो मानवता के लिए ईश्वर के इरादे को उसके इच्छित उद्देश्य तक पहुंचाता है। तो यीशु सच्चा इसराइल बन जाता है, और फिर मसीह में विश्वास के आधार पर मसीह से संबंधित होने के कारण हम फिर भगवान के सच्चे लोग भी बन जाते हैं। इसलिए मेरे पास आदम और हव्वा से शुरू करने की यह पंक्ति है, और फिर पाप के बाद इब्राहीम और इसराइल भगवान के इरादे को लाने के लिए हैं, यानी उसका इरादा एक ऐसे लोगों को बनाने का है जिसके साथ वह एक रिश्ते में प्रवेश करेगा। लेकिन इसराइल पाप के कारण विफल हो जाता है, लेकिन फिर यीशु आते हैं और वह अपने लोगों के लिए भगवान के सच्चे इरादे को पूरा करते हैं, और फिर वे सभी जो मसीह में विश्वास करते हैं वे भी भगवान के सच्चे लोग बन जाते हैं। इसलिए याद रखें, हमने बात की वास्तव में इससे पहले कि मैं भगवान के लोगों में सदस्यता के मानदंडों पर कोई टिप्पणी करूं, इससे गलाटियंस में चल रही कुछ बहुत ही दिलचस्प बातों को समझाने में मदद मिलती है। अध्याय 3 में और याद रखें, मुख्य प्रश्न यह है कि इब्राहीम की संतान कौन है। परमेश्वर ने इब्राहीम से जो आशीष देने का वादा किया था उसमें भाग लेने का अधिकार किसे मिलता है? मुक्ति का आशीर्वाद, पवित्र आत्मा का वादा। इब्राहीम की सच्ची संतान कौन है? इब्राहिम से किए गए वादों में कौन भाग लेता है? अब ध्यान दें कि पॉल गैलाटियंस में अध्याय 3 से शुरू करते हुए क्या कहता है। अगर मैं इसे पा सकता हूं तो वह कहता है, अब वादे इब्राहिम से किए गए थे। यह है उत्पत्ति अध्याय 12। प्रतिज्ञाएं इब्राहिम और उसकी संतानों से की गई थीं। और फिर पौलुस कहता है, यह नहीं कहता और संतान को बहुवचन के समान, परंतु यह कहता है और तुम्हारी संतान को, अर्थात एक ही मनुष्य को जो मसीह है। तो फिर वह जो कह रहा है वह यह है कि अब्राहम का सच्चा वंश, अब्राहम की सच्ची प्रजा, अब्राहम की सच्ची संतान यीशु मसीह का व्यक्तित्व है। हालांकि यदि आप अध्याय 3 और श्लोक 29 के अंत तक जाते हैं तो ध्यान दें कि पॉल क्या कहता है। और यदि आप मसीह के हैं, पाठकों गलातियों, यदि आप मसीह के हैं तो आप इब्राहिम की संतान हैं, वादे के अनुसार उत्तराधिकारी हैं। तो यीशु इब्राहिम की संतान और गलाटियन ईसाई कैसे हो सकते हैं? और मैं हमें भी इसमें शामिल करूंगा। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु सबसे पहले इब्राहिम के वादे को पूरा करते हैं और फिर हम मसीह में विश्वास और मसीह से संबंधित होने के आधार पर उसमें भाग लेते हैं। इसलिए पॉल कह सकता है, यीशु इब्राहिम का सच्चा वंश है, लेकिन यदि हम मसीह में हैं तो हम इब्राहिम का वंश भी हैं। अब इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के लोगों में सदस्यता के मानदंड क्या हैं। याद रखें, इस समय तक और विशेष रूप से इस पुस्तक में पॉल के विरोधियों ने, यहूदीवादियों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा कि परमेश्वर के लोगों से संबंधित होने का सच्चा मानदंड मोजेक कानून के तहत जीवन जीना है, शारीरिक रूप से इब्राहिम के बच्चे होना है। हालांकि पॉल कहते हैं कि यीशु मसीह के आने के साथ मानदंड बदल गए हैं। अब ईश्वर के लोगों की सदस्यता भौतिक रूप से इज़राइल या ईश्वर के इब्राहिम के बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब ईश्वर के लोगों की सदस्यता पूरी तरह से यीशु मसीह के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमती है। इसीलिए पॉल कह सकता है कि अन्य जातियों के साथ साथ यहूदी भी समान रूप से परमेश्वर के लोग हैं। क्यों? क्योंकि अब यह राष्ट्रीय पहचान नहीं है, यह अब कानून के तहत नहीं रह रहा है, बल्कि अब यीशु मसीह में विश्वास ही एकमात्र मानदंड है। तो पॉल कह सकता है, यदि आप मसीह में हैं तो इब्राहिम का वंश कौन है? यदि आप मसीह में हैं तो आप भी इब्राहिम के सच्चे वंश हैं, आप भी ईश्वर की सच्ची संतान हैं। मुझे लगता है कि मैंने पहले इसका उल्लेख किया था। क्या मैंने उल्लेख किया था कि हम यह गीत गाते थे? मैंने हमेशा सोचा था कि यह थोड़ा विचित्र और मूर्खतापूर्ण था, लेकिन यह संभवतः धार्मिक रूप से सबसे सटीक में से एक है कि पिता अब्राहम के कई बेटे थे, पिता के कई बेटे थे इब्राहिम। यह इससे अधिक सच्चा नहीं हो सकता। फिर आप गीत के बारे में जो भी सोचें, यह गलाटियंस में पाए जाने वाले गहन धार्मिक सत्य को संप्रेषित करता है कि मसीह में हम इब्राहिम से किए गए वादों में भाग लेते हैं। और गलातियों में पॉल इसी पर बहस कर रहा है। अन्य जातियों को कानून के अधीन होने या यहूदी के रूप में जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लोगों की सदस्यता अब राष्ट्रीय पहचान तक सीमित नहीं है। अब मसीह में पूर्णता के कारण, इस योजना के कारण, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर के सच्चे लोगों को उनके भाग्य और लक्ष्य तक पहुंचाया है, परमेश्वर के लोगों में सदस्यता पूरी तरह से यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा निर्धारित होती है। इसलिए अन्य जाति और यहूदी समान रूप से परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। तो फिर पॉल जो घटित होते हुए देखता है, मुझे लगता है कि नया नियम जो देखता है वह यह नहीं है कि चर्च इज़राइल की जगह ले लेता है या उससे छुटकारा पा लेता है, बल्कि यह कि इज़राइल का विस्तार अब अन्य जातियों को शामिल करने के लिए किया गया है और फिर यीशु मसीह में विश्वास के आधार पर इसे फिर से परिभाषित किया गया है। इसलिए आप कई अन्य नए नियम की पुस्तकों में देखेंगे, आप अक्सर नए नियम के लेखकों को पुराने नियम के पाठ लेते हुए पाएंगे जो इसराइल को संदर्भित करते हैं और अब उन्हें चर्च में लागू कर रहे हैं। अब चर्च नया इसराइल है, ईश्वर के नए लोग जिनमें यहूदी और अन्य जाति शामिल हैं, अब सच्चे इसराइली यीशु मसीह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, परमेश्वर के लोगों के बारे में कोई प्रश्न? खैर, मैं इसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि इसका इस बात पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि हम आज इसराइल राष्ट्र के साथ अपने संबंधों के बारे में कैसे सोचते हैं और मध्य पूर्व में क्या चल रहा है और इस तरह की चीजें जो हम गैलाटियन में पढ़ते हैं, मुझे लगता है गहराई से होनी चाहिए, उसके बारे में हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करें। ठीक है, खैर आइए आरंभिक चर्च के मेल का एक और भाग खोलें। एक तरह से यह एक कट ऑफ बिंदु है। जो मैं अब से कहने जा रहा हूं वह सोमवार की परीक्षा में नहीं होगा, बल्कि मैं अब से जो कहने जा रहा हूं वह परीक्षा संख्या 3 में होगा जो बाद में आएगा। तो गलातियों और परमेश्वर के लोगों की चर्चा जिसके बारे में हमने अभी बात की वह सीमा है। इसलिए गलातियों के माध्यम से कार्य, जिसमें परमेश्वर के लोगों पर यह भ्रमण भी शामिल है, परीक्षा के लिए उचित खेल है। लेकिन आइए आरंभिक चर्च के मेल का एक और टुकड़ा खोलें और उस पुस्तक को देखें जिसे हम इफिसियों को पत्री कहते हैं। अब पहचानने वाली पहली बात यह है कि फिलिप्पियों, कुलुस्सियों और फिलेमोन के साथ इफिसियों का संबंध पॉल के पत्रों के संग्रह से है, जिन्हें अक्सर जेल पत्रियां कहा जाता है। तो फिलिप्पियों, कुलुस्सियों और फिलेमोन के साथ इफिसियों का लेखन के इस चार गुना समूह से संबंध है, जिसे अक्सर जेल पत्रियां कहा जाता है। और इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि पॉल इन चार पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह जेल में है, क्योंकि वह ये पत्र लिख रहा है। अब यह निर्धारित करने में कठिनाई हो रही है कि वह जेल में कहाँ है। आज सबसे आम धारणा यह है कि पॉल रोम में है। पॉल रोम की जेल में है और रोम की कैद से ही उसने ये पत्र लिखे हैं। हालांकि अन्य सुझाव भी हैं। कुछ लोगों का सुझाव है कि इनमें से कुछ पत्र तब लिखे गए होंगे जब पॉल इफिसस शहर, इफिसस की जेल में था। कुछ ने कोरिंथ और कैसरिया का सुझाव दिया है। तो अन्य विकल्प भी हैं। मुझे अभी किसी मामले पर बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जहां तक हम वास्तव में पत्रों को कैसे पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास फर्क पड़ता है। यह इस बात पर निर्भर हो सकता है कि हम पॉल के जीवन की समयरेखा कैसे बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है जहां पॉल को कैद किया गया है, जहां तक हम इनमें से कुछ पत्रों, इफिसियों, फिलिप्पियों, कुलुस्सियों और फिलेमोन की व्याख्या कैसे करते हैं। लेकिन अभी आपके लिए यह जानना पर्याप्त है कि पॉल जेल में था, क्योंकि उसने ये पत्र लिखे थे, और सबसे आम सिद्धांत यह है कि वह इस समय रोम की जेल में था। इफिसियों की पुस्तक, बस थोड़ी देर बाद मैं बहस करना चाहता हूं और यह प्रदर्शित करने का प्रयास करना चाहता हूं कि इफिसियों, इस पुस्तक का नाम इफिसियों है, संभवतः एक मिथ्या नाम है कि संभवतः इसे इफिसियों के लिए पत्र का नाम नहीं दिया जाना चाहिए, और मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि क्यों। लेकिन क्या से शुरू करते हुए, मैं अभी भी इसे इफिसियों के लिए पत्र ही कहूंगा, क्योंकि हमारी बाइबल में इसका इसी तरह उल्लेख किया गया है, और इसके अलावा कुछ भी करने से बहुत अधिक भ्रम पैदा होगा। लेकिन आइए शुरुआत इस बात से करें कि इस पत्र का मुख्य विषय क्या है। हम भी थोड़ी बात करेंगे, क्या कोई प्रयोजन है? ऐसा प्रतीत होता है कि पॉल यह क्यों लिख रहा है। हमने बस गलातियों को देखा और देखा कि पॉल एक प्रकार की झूठी शिक्षा का मुकाबला कर रहा था, जो कि यहूदीवादी थे, जिन्होंने चर्च में घुसपैठ की थी और गैर यहूदी ईसाइयों को मूसा के कानून के प्रति समर्पण करने की कोशिश कर रहे थे। क्या इस पुस्तक में भी कोई ऐसा ही मुद्दा या समस्या या संकट है जिसके कारण पॉल को इसे लिखना पड़ा? हम वो पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले व्यापक विषय क्या प्रतीत होता है? मैं आपको सुझाव दूंगा कि इफिसियों का प्राथमिक विषय, और मैं इसका बचाव करूंगा क्योंकि हम इफिसियों के हिस्से के माध्यम से काम करते हैं, व्यापक विषय मसीह में सभी चीजों का पूर्ण सामंजस्य है। तो पॉल प्रमुख विषय जो पूरे इफिसियों में अपना रास्ता बनाता है, और पिछली बार जब मैंने इस कक्षा को पढ़ाया था तब से मैंने इस पर अपना विचार बदल दिया है, लेकिन प्रमुख विषय मसीह में सभी चीजों का मिलमिलाप है। वास्तव में इफिसियों के अध्याय एक और श्लोक नौ को एक अर्थ में बाकी इफिसियों के बारे में बहुत कुछ के सारांश के रूप में देखा जा सकता है। अध्याय एक और श्लोक में, वास्तव में श्लोक दस में, मैं श्लोक नौ का समर्थन करूंगा और पढ़ूंगा। यह कहता है, उसने भगवान ने अपनी अच्छी इच्छा के अनुसार हमें अपनी इच्छा का रहस्य बताया है जो उसने निर्धारित किया था मसीह में समय की पूर्णता के लिए एक योजना के रूप में सभी चीजों को इकट्ठा करना या सारांशित करना या मसीह में सभी चीजों, स्वर्ग की चीजों और पृथ्वी पर चीजों को समेटना। और मैं आपको सुझाव दूंगा कि बाकी इफिसियों के बारे में है कि यह अब कैसे हो रहा है और यह कैसे होगा। इसलिए इफिसियों की पुस्तक में मुख्य विषय सभी चीजों, स्वर्ग और पृथ्वी, मसीह यीशु में सभी चीजों का सामंजस्य है। अब इफिसियों का पत्र, वास्तव में हालांकि मैं बहस करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने ये चित्र क्यों लगाए हैं, क्योंकि मैं तर्क देने जा रहा हूँ कि पॉल स्पष्ट रूप से इफिसस में चर्च को संबोधित नहीं कर रहा था। हालांकि किताब में अधिनियमों की पुस्तक में आपने पॉल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, यह हमें इफिसुस में बिताए गए समय के बारे में बहुत कुछ बताता है। यह एक तस्वीर है, ये बस प्राचीन इफिसस रंगभूमि के आधुनिक समय की तस्वीरें हैं। मेरा मानना है कि यह डोमिनिशियन के मंदिर का हिस्सा है। मुझे लगता है कि यह आर्टेमिस के मंदिर का हिस्सा है। अब इफिसियों के पास एक सीधी सादी योजना या रूपरेखा है जहां तक इसके विकास का सवाल है। सबसे पहले इफिसियों के पहले तीन अध्यायों को संकेत के रूप में देखा जा सकता है। याद रखें कि कुछ हफ्ते पहले पॉल से हमारे परिचय में हमने बात की थी, यह पॉल के पहले से ही संस्करण की तरह है, लेकिन पहले से ही अभी तक का संस्करण नहीं है। राज्य के बारे में यीशु की शिक्षा के संबंध में विद्वान इसे पॉल के संदर्भ में सांकेतिक अनिवार्यता कहते हैं। संकेत वह है जो मसीह में पूर्णता के आधार पर मसीह से संबंधित होने के कारण पहले ही हो चुका है। अनिवार्यता वह व्यक्त करती है जो अभी तक घटित नहीं हुआ है। तथ्य यह है कि राज्य अपनी पूर्णता और पूर्णता पर नहीं पहुंचा है। इसका मतलब है कि अनिवार्यता, आदेश अभी भी आवश्यक हैं। इफिसियन स्वाभाविक रूप से टूट जाता है, और अन्य संरचनात्मक और व्याकरणिक संकेतक हैं कि यह मामला है, लेकिन इफिसियन स्वाभाविक रूप से दो बिल्कुल समान खंडों में टूट जाता है। पहले तीन अध्याय सांकेतिक हैं, जहां पॉल पहले से ही चर्चा करता है, यानी कि हम मसीह में कौन हैं, हम मसीह में शामिल होने के आधार पर कौन हैं, और फिर अध्याय चार से छह तक और अधिक अनिवार्यता पर चर्चा करते हैं, अर्थात आदेश जो इंगित करते हैं कि अध्याय एक से तीन के प्रकाश में भगवान के लोगों को कैसे रहना और प्रतिक्रिया देनी है। तो अध्याय एक से तीन तक चार से छह के लिए आधार प्रदान करते हैं, और चार से छह स्वाभाविक रूप से एक से तीन अध्याय से विकसित होते हैं। तो चार से छह एक ऐसी जीवन शैली है जिसे संभव बनाया गया है, लेकिन स्वाभाविक रूप से अध्याय एक से तीन में संकेतक की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसलिए यदि पॉल कहता है कि हम मसीह के साथ पलेबढ़े हैं, हम मसीह के साथ बैठे हैं, यदि कोई मसीह में है कि कोई व्यक्ति मसीह में अपने पापों के लिए मर गया है, तो यह संकेत है। तब पॉल के आदेशों की अनिवार्यता यह है कि इसे कैसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए और किसी को उसके प्रकाश में जीवन कैसे जीना चाहिए। और इसलिए इफिसियों इसे विभाजित करने के अन्य तरीके भी हैं, लेकिन इफिसियों को स्वाभाविक रूप से इन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वास्तव में इफिसियों में एक दोखंडीय टिप्पणी है कि दोनों खंड आकार में लगभग समान हैं। उनमें से एक अध्याय 1-3 पर है और एक 4-6 तक अध्याय पर है। इसलिए हमेशा यह धारणा रही है कि इफिसियों को इस तरह से आसानी से विभाजित किया जा सकता है। अब इफिसियों को क्यों लिखा गया था? पुनः हमने पॉल के अधिकांश पत्रों में यह प्रश्न पूछा है। उन्होंने गलाटियंस क्यों लिखा? उन्हें बैठकर प्रथम और द्वितीय कुरिन्थियों को क्यों लिखना पड़ा? उन्होंने रोमन क्यों लिखी? और हम काफी प्रशंसनीय सुझाव देने में सक्षम हुए हैं। इफिसियों के साथ यह उतना आसान नहीं है। नए नियम के विद्यार्थियों को यह पता लगाने में काफी कठिनाई हुई कि पॉल ने इफिसियों को क्यों लिखा। तो आइए आम तौर पर यह पूछकर शुरुआत करें कि क्या हम इफिसियों को अकेले पढ़ते हैं? क्या हम आम तौर पर संक्षेप में बता सकते हैं कि पॉल क्या कर रहा है? और फिर हम पूछेंगे कि क्या हम अधिक विशिष्ट हो सकते हैं? हम पूछेंगे क्या कोई बड़ी समस्या है? क्या किसी पथभ्रष्ट या झूठी शिक्षा की कोई प्रमुख शिक्षा है जिसका पॉलुस प्रत्युत्तर दे रहा है? क्या चर्च में कोई संकट है जिस पर पॉल प्रतिक्रिया दे रहा है? लेकिन सबसे पहले आम तौर पर मुझे लगता है कि पॉल का उद्देश्य मूल रूप से इन दो वर्गों सांकेतिक और अनिवार्य के बीच संक्रमण में संक्षेपित है। अध्याय 4 में पद 1 में पॉल कहता है, इसलिए मैं प्रभु का कैदी आपसे उस बुलाहट के योग्य जीवन जीने की विनती करता हूं जिसके लिए आपको बुलाया गया था। कॉलिंग अध्याय 1-3 तक को संदर्भित करती है। अपना जीवन जीने का आदेश अब अध्याय 4-6 तक संदर्भित करता है। इसलिए मैं आम तौर पर कहूंगा, पॉल इस पत्र को लिखने का मुख्य उद्देश्य ईसाइयों को यीशु मसीह के योग्य जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो फिर संकेत के आधार पर इस पर आधारित कि वे मसीह में कौन हैं, उनकी बुलाहट अब उन्हें लगातार और उस बुलाहट के योग्य जीवन जीना है। इसलिए आम तौर पर पॉल ईसाइयों को सुसमाचार के योग्य या वे मसीह में जो हैं उसके योग्य जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिखते हैं। अब क्या हम इससे अधिक विशिष्ट हो सकते हैं? समस्या यह है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था, यदि हम सभी गैलाटियंस को पढ़ने के लिए समय निकालें इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ भी कहूं, तो मुझे विश्वास है कि हम में से अधिकांश लोग इसके बारे में एक प्रशंसनीय विवरण देने में सक्षम होंगे। पॉल को पत्र लिखना पड़ा, मुझे लगता है कि आपको इफिसियों के साथ बहुत अधिक कठिन समय बिताना होगा। और सवाल यह है कि क्या कोई समस्या या संकट है जिसे पॉल संबोधित करते दिख रहे हैं? क्या कोई मुद्दा है या कोई गलत शिक्षा है जो गलातियों की तर्ज पर हो सकती है, या क्या यहूदीवादी थे या कुछ और था जिसने चर्च में घुसपैठ की थी जिससे पॉल परेशान हो गया और उसे यह पत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा? और वास्तव में कई सुझाव आए हैं, लेकिन मैं उनमें से एक पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। विशिष्ट उद्देश्य के बारे में एक सुझाव दिया गया है, और मुख्य बात यह है कि इफिसियों में होने वाली सभी शक्ति भाषा, ताकत और शक्ति आदि के संदर्भ पर ध्यान दिया जाए। मैंने आपको कुछ सबसे प्रमुख छंदों की एक सूची दी है, और मैं उन सभी को पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन श्लोक 19 में अध्याय 1 इसे सुनो, भगवान ने अपने लोगों के लिए क्या किया है इसका जिक्र करते हुए, और वह कहते हैं, हमारे लिए उनकी शक्ति की अथाह महानता क्या है जो इसके अनुसार विश्वास करते हैं उसकी ताकत या उसकी शक्तिशाली शक्ति के कार्य के लिए। ध्यान दें कि ताकत और शक्ति की शर्तों का ढेर लग रहा है। अध्याय 1 श्लोक 21 बस कुछ श्लोक बाद, हर नियम और अधिकार और शक्ति और प्रभुत्व से बहुत ऊपर। फिर से शक्ति और ताकत के शब्दार्थ क्षेत्र में भाषा के ढेर पर ध्यान दें। अध्याय 3 श्लोक 7 में आपको इस सुसमाचार का एक और उदाहरण देने के लिए मैं पॉल परमेश्वर के अनुग्रह के उपहार के अनुसार एक सेवक बन गया हूँ जो उसकी शक्ति के कार्य के द्वारा मुझे दिया गया था। और इसलिए इफिसियों की पुस्तक के आकार के अनुसार ताकत और शक्ति की इस भाषा की अनुपात ही मात्रा है। और सवाल यह है कि क्या यह इस बात का सुराग हो सकता है कि पॉल क्या था, कुछ ऐसा जिसे पॉल संबोधित कर रहा था, या कोई मुद्दा या समस्या जिसका वह पीछा कर रहा था। एक व्यक्ति है, आप अपने नोट्स में अगला भाग देखेंगे, क्लिंटन अर्नोल्ड का प्रस्ताव। अब आप नहीं जानते होंगे कि क्लिंटन अर्नोल्ड कौन हैं, और आपको परवाह भी नहीं होगी, लेकिन वह उस पद के सबसे प्रसिद्ध अधिवक्ताओं में से एक हैं, जिस पर पॉल एक बहुत ही विशिष्ट समस्या का समाधान कर रहे थे। क्लिंटन अर्नोल्ड टैलबोट थियोलॉजिकल सेमिनरी में न्यू टेस्टामेंट के प्रोफेसर हैं। यह कैलिफोर्निया में बायोला विश्वविद्यालय का धर्मशास्त्रीय मदरसा है। क्लिंटन अर्नोल्ड ने सुझाव दिया कि यह सारी शक्ति भाषा जादू की स्थिति को संबोधित करने वाले पॉल का प्रतिबिंब है। याद रखें कि हमने बात की थी जादू नहीं, जैसे खरगोशों को टोपियों से बाहर निकालना और चीजों को गायब कर देना, उस तरह का जादू नहीं। लेकिन हमने सेमेस्टर की शुरुआत में पहली सदी के धार्मिक दार्शनिक विश्वास के रूप में जादू के बारे में बात की थी। जादू यह है कि मंत्रों के माध्यम से कोई देवताओं को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है या कोई बुरी शक्तियों को दूर कर सकता है। तो मूल रूप से अर्नोल्ड जो करता है वह कई शुरुआती स्रोतों और पहली शताब्दी के आसपास के दस्तावेजों की जांच के माध्यम से होता है। अर्नोल्ड का प्रस्ताव है कि इफिसियन ईसाई जादू से प्रभावित थे और इस विचार से प्रभावित थे कि आध्यात्मिक राक्षसी प्राणी उनके भाग्य को नियंत्रित करते थे और उन्हें नियंत्रित करते थे। दुनिया और जादू ने इसका उत्तर दे दिया। वह मंत्रों, सही प्रार्थनाओं और कथनों और इस तरह की चीजों के माध्यम से देवताओं को कार्य करने या बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और इसीलिए अर्नोल्ड कहते हैं, इसीलिए पॉल इस सारी शक्ति भाषा का उपयोग करता है। क्या वह दिखाना चाहता है कि आपको इन आध्यात्मिक शक्तियों, इन शत्रु प्राणियों से डरने की जरूरत नहीं है? इसके बजाय यीशु मसीह ने उन्हें पहले ही हरा दिया है। यीशु ही सच्ची शक्ति है। इसलिए जब पॉल इस बारे में बात करता है कि कैसे ईश्वर ने अपनी शक्ति के बल पर मसीह को पुनर्जीवित किया, तो वह इस तथ्य के बारे में बात करता है कि अब हम उस शक्ति में भाग ले सकते हैं जिसका उदाहरण तब दिया गया था जब ईश्वर ने अपनी शक्तिशाली शक्ति के माध्यम से यीशु को मृतकों में से जीवित किया था। यह सारी शक्ति भाषा जादू की इस समस्या और आध्यात्मिक दुनिया और राक्षसी प्राणियों के डर से निपटने का एक तरीका है। और यह एक है, मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि क्या वह सोचता है कि यह मुख्य उद्देश्य है, लेकिन निश्चित रूप से वह इसे मुख्य उद्देश्यों में से एक के रूप में देखता है। तो वह कहेगा, हाँ, पॉल एक झूठी शिक्षा का मुकाबला कर रहा है। यह जादू और आध्यात्मिक दुष्ट प्राणियों की धारणा है और उनका डर है, और वह इफिसियों को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने पहले ही उन पर विजय प्राप्त कर ली है। जिस शक्ति ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, परमेश्वर ने उसमें जो काम किया वह कहीं अधिक महान है, और उसने इन सभी अन्य शक्तियों को अपने अधीन कर लिया है, इसलिए उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। यह क्लिंटन अर्नोल्ड का प्रस्ताव है और यह बहुत आम है। बहुत से लोगों ने उसका अनुसरण किया है और इफिसियों को जादू और राक्षसी दुष्ट प्राणियों की समस्या पर पॉल की प्रतिक्रिया के रूप में पढ़ा है। शुक्रवार को हम इफिसियों के बारे में अधिक बात करेंगे। मैं उस मुद्दे को उठाने जा रहा हूँ और मैं आपको इफिसियों में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में एक बहुत अलग प्रस्ताव सुझाने जा रहा हूँ। यह डॉक्टर डेव मैथ्यूसन का न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर इफिसियों की पुस्तक पर 20वां व्याख्यान है।